नमस्कार भारत, आज है तारीख 8 जुलाई, दिन रविवार। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। अमेरिका में पढ़ने गए भारतीय छात्र की गोलीबारी में मौत, पुलिस ने की पुष्टि। आज से दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का भारतीय दौरा, क्यों है बेहद महत्वपूर्ण।
दक्षिण कोरिया के संबंध 4 मेजर पावर्स के साथ हैं, चीन, जापान, रशिया और अमेरिका के साथ हैं। उसी तरह के संबंध वो इन भारत के साथ भी बनाना चाहते हैं।
बिहार के सारण में नाबालिग छात्रा से सामूहिक बलात्कार, पीड़िता ने सुनाई आप बीती।
बाथरूम में 4 लड़का घुसा के बाद वो लोग हमसे सेक्स करने लगे। सेक्स करने के बाद पूरा लड़का को बुलाया, स्कूल का लड़का सबका, वो भी हमसे सेक्स करने लगे और प्रिंसिपल भी देखे।
होंगी खेल की खबरें और अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। अमेरिका के मिसौरी की कंसास सिटी में शुक्रवार शाम को गोलीबारी हुई, जिसमें एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। मारे गए छात्र की पहचान तेलंगाना के वारंगल जिले के 25 वर्षीय शरद कोपू के रूप में हुई है। शरद कोपू मिसौरी विश्वविद्यालय के छात्र थे। मिसौरी की कंसास सिटी पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है। पुलिस ने बताया है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र शरद काम भी करते थे और उनके परिजनों को इस घटना के बारे में बता दिया गया है। इस घटना को अंजाम देने वाले हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है। फुटबॉल विश्व कप के चौथे क्वार्टर फाइनल में कल रात को रूस और क्रोएशिया के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट में रूस को 4-3 से हराकर क्रोएशिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। शूटआउट के अंतिम मौके में इवान राकिटिच ने गोल दागकर अपनी टीम को मैच का विजेता बना दिया। इस मैच के साथ ही मेजबान रूस विश्व कप से बाहर हो गया है। अब सेमीफाइनल में क्रोएशिया का मुकाबला इंग्लैंड से होने वाला है। तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने स्वीडन को 2-0 के अंतर से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया था। फ्रांस और बेल्जियम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। हैती की सरकार को देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते पेट्रोल के दामों में 40% वृद्धि का फैसला रद्द करना पड़ा है। इससे पहले पेट्रोल के दाम बढ़ाने के फैसले के बाद देश में हिंसा भड़क उठी थी। इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए थे। सड़क जाम करने के लिए प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए और बैरिकेड से रास्ता रोका। कई जगहों पर पुलिस और भीड़ के बीच पत्थरबाजी भी हुई। इस हिंसा में कम से कम 3 लोगों की जान चली गई। विरोध प्रदर्शन में फंसे हैती के एक निवासी ने कहा, मेरी पत्नी और बच्चे हैं। राष्ट्रपति देखें कि कैसे लोगों की कारें जल रही हैं। बाजार में सभी सामान महंगे हो गए हैं। अगर आप जमैका जाकर आएंगे तो पता चलेगा कि देश में हालात कितने खराब हैं। आपको लोगों की बात सुननी ही होगी और अपने शब्द वापस लेने होंगे। मेक्सिको के नव निर्वाचित राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ने ड्रग से संबंधित हिंसा से निपटने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण की घोषणा की है। इस समस्या से निपटने के लिए ऐसे अपराधों से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में लोगों से सलाह ली जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूहों, धार्मिक निकायों और नागरिक समाज के सदस्यों से नए प्रशासनिक प्रस्तावों की जांच के लिए कहा जाएगा। इसमें भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई, ड्रग व्यापार में जबरन धकेले जाने वाले युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण श्रमिकों के लिए माफी और अपराध के पीड़ितों के लिए ट्रुथ कमीशन बनाना शामिल है। जापान में पश्चिमी इलाकों में आई बाढ़ और भूस्खलन में 44 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 लोग लापता हैं। इन इलाकों में कई दिनों से मूसलाधार बारिश के चलते हालात काफी बिगड़ गए हैं। यहां बारिश के कारण सैकड़ों घरों को भी नुकसान पहुंचा है। पश्चिमी और केंद्रीय जापान में 20,00,000 लोगों को अपना घर छोड़ सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी दी गई है। हालांकि हालात सुधरने पर अब कुछ प्रभावित इलाकों से हाई अलर्ट हटा दिया गया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इन हालातों पर दुख जाहिर करते हुए कहा, मैं गहरा शोक व्यक्त करता हूं और उन सभी लोगों के प्रति मेरी सहानुभूति है जो प्रभावित हुए हैं। दक्षिणी सूडान में राष्ट्रपति साल्वा कियर ने अपने धुर विरोधी और विद्रोही नेता रिएक मचार को उपराष्ट्रपति के तौर पर फिर से नियुक्त कर लिया है। यह फैसला गृह युद्ध समाप्त करने के लिए शक्ति के बंटवारे से जुड़े एक समझौते के तहत लिया गया है। सूडान के विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार और विद्रोहियों ने शक्ति के बंटवारे पर सहमति जाहिर की है। राष्ट्रपति ने रिएक मचार को फिर से नियुक्त करने का फैसला किया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। अमेरिका के मिसौरी में हुई गोलीबारी की एक घटना में एक भारतीय छात्र के मारे जाने की पुष्टि हुई है। भारतीय समय अनुसार ये गोलीबारी कल सुबह हुई थी, लेकिन कंसास सिटी पुलिस ने बीबीसी से कल शाम भारतीय छात्र की मौत की पुष्टि की। शरद कोपू नामक छात्र तेलंगाना के वारंगल जिले के थे। इस मामले की और अधिक जानकारी के लिए सीधा चलते हैं वॉशिंगटन, जहाँ बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी मौजूद हैं। जी इरम, बताएं क्या है पूरा मामला। जी, हमारे तकनीकी खराबी के कारण इरम से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ इस वक्त कमलेश मठेनी हैं। कमलेश, बताएं क्या था ये घटना, क्या थी इसके बारे में।
शाहिद, अमेरिका के मिसौरी के कंसास सिटी में शुक्रवार शाम को गोलीबारी हुई है, जिसमें एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। ये इस भारतीय छात्र की पहचान तेलंगाना के वारंगल जिले के 25 वर्षीय शरद कोपू के रूप में हुई है, जो मिसौरी विश्वविद्यालय के छात्र हैं। मिसौरी की कंसास सिटी पुलिस ने इस घटना की पुष्टि भी की है और उन्होंने बीबीसी को बताया है कि गोली लगने के बाद शरद को अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई।
जी, चलते हैं, हमारा संपर्क हो चुका है वॉशिंगटन में बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी से। इरम अब्बासी से पूछते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। जी इरम, बताएं।
जी, जैसा कि आपने सुना कि 25 साल एक स्टूडेंट हैं, जो कि इनका ताल्लुक इंडिया से है, और उनको गोली मार कर उस जगह पे गोली मारी गई जहाँ पे वो काम कर रहे थे, और वहाँ पर उनको जो है गनशॉट्स लोगों को सुनाई दिए गए। पुलिस बुलाई गई, जब पुलिस आई तो उन्होंने शरद को देखा, वो खून में लथपथ था, और फिर उसको हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वो वहाँ पर उस दम तोड़ गया। और पुलिस ने अभी तक ये वजह नहीं बताई कि इस होमोसाइड कह रही है पुलिस इसको इस वक्त, और ये कहा जा रहा है कि अभी तक ये वाजे नहीं है कि ये हमला जो है करने वाला कहाँ है, क्योंकि सस्पेक्ट जो है उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया और वजह अभी तक मालूम नहीं हुई कि वजह क्या बनी कि इस दिन दिहाड़े इस तरह उनको गोली मार दी गई उनके काम की जगह पर।
इरम, इसमें कोई नस्लीय हिंसा का मामला या कोई ऐसा मामला सामने आया है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही शख्स मारा गया और कोई नहीं।
जी, अभी तक पुलिस ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जिस बंदे पे शक किया जा रहा है वो भी नहीं पकड़ा गया। लेकिन हम ये जानते हैं कि कैंसर सिटी में इससे पहले भी एक वाकया हो चुका है, जिसमें एक बंदे ने, एक वाइट अमेरिकन ने रेशल अब्यूज की कुछ बातें करके एक इंडियन को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। तो उस सिटी में हमने देखा है कि इस तरह के वाकयात पहले हो चुके हैं, जो कि नस्ल की बुनियाद पर हुए हैं, रेशल बेसिकली उसकी बुनियाद पर, रेस की बुनियाद पर हुए हैं। और उस बंदे ने अपने बयान में ये कहा था कि उसको ये लग रहा था कि ये मुसलमान है और वो मुसलमानों से नफरत करता है, तो इसलिए उसने उनको गोली मारी।
बहुत बहुत शुक्रिया इरम। जी इरम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी इरम अब्बासी, जो अमेरिका में भारतीय छात्र के मारे जाने की घटना की जानकारी दे रही थी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन आज अपने पहले भारतीय दौरे पर आ रहे हैं। वो 11 जुलाई तक यहां रहेंगे। यात्रा के दौरान मून के साथ उनकी पत्नी, मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी और उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियां भी रहेंगी। ट्रेड वॉर की बढ़ती आहट के बीच आर्थिक महत्व के साथ साथ रणनीतिक तौर पर भी मून जे इन का यह भारतीय दौरा दोनों देशों के लिए कितनी अहमियत रखता है, यही बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी ने विदेश मामलों के जानकार हर्ष पंत से पूछा।
जब ये मून प्रेसिडेंट बने थे, तब इन्होंने जो अपनी नई पॉलिसी की चर्चा की थी, बात की थी, जिसको इन्होंने न्यू सदर्न पॉलिसी कहा था, उसमें इन्होंने ये भारत को काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया था। उसमें इन्होंने ये कहा था कि जैसे दक्षिण कोरिया के संबंध 4 मेजर पावर्स के साथ हैं, चीन, जापान, रशिया और अमेरिका के साथ हैं, उसी तरह के संबंध वो इन भारत के साथ भी बनाना चाहते हैं। तो कहीं पर शुरू से उनकी मंशा ये रही थी कि वो भारत को और दक्षिण कोरिया को पास लाएं। और आपको याद होगा, जब भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की विजिट हुई थी दक्षिण कोरिया में 2015 में, तब भी ये बात उठी थी कि जो भारत है वो अपने को अच्छे से लिंक करना चाह रहा था दक्षिण कोरिया से अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। तो कहीं पर जो दोनों का सामंजस्य बन रहा है, उनकी जो नई सदर्न पॉलिसी है, जो भारत की जो लिटीज पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, अब उसके चलते दोनों देशों को करीब आना दोनों देशों का स्वाभाविक है, और प्रेसिडेंट मून, राष्ट्रपति मून की जो ये पॉलिसी रही है वो शुरू से ये कहते आए कि वो भारत को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं।
अगर हम देखें कि आर्थिक रूप से दक्षिण कोरिया भारत के लिए कितना महत्व रखता है,
दक्षिण कोरिया ने अपने को टेक्नोलॉजी का एक जो हब बनाया है उसके चलते भारत के साथ उसके बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग संबंध रहे। तो चाहे आप सैमसंग और हुंडई की बात करते हैं, जो भारत में ऐसा माना जाता है कि जैसे हमारी अपनी कंपनियां हैं, क्योंकि इतना लंबे समय से हम उनको जानते हैं और इतना उनको मार्केट पेनिट्रेशन इतना ज्यादा है उनका। और भारत का जो दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक संबंध है वो काफी गहरा है, तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आया है, और दूसरा जो ट्रेड है हमारा वो काफी बड़ा है। तो एक समय तो ऐसा था जब दक्षिण कोरिया ने जापान को भी ओवरटेक कर लिया था,
और पिछले कुछ वक्त से अमरीका और उत्तर कोरिया के बीच जो एक रिश्तों में बदलाव जो हमें देखने को मिला उसमें भी दक्षिण कोरिया का एक बड़ा अहम योगदान था। मतलब वो उसने एक पुल की तरह काम किया। अगर हम भारत की नज़र से देखें तो हमारी विदेश नीति में हम दक्षिण कोरिया को कहाँ और कितना महत्वपूर्ण स्थान दे सकते हैं?
तो भारत ने हमेशा से चाहा है कि जो कोरियन पेनिनसुला है वो सेफ और सिक्योर और स्टेबल हो। तो अगर वो एक समृद्ध कोरियन पेनिनसुला, एक सशक्त कोरियन पेनिनसुला बन के उभरता है, तो उससे भारत जो कि अपने संबंध जापान और साउथ कोरिया के साथ उभरते हुए देख रहा था, उसमें समस्या नॉर्थ कोरिया की थी, समस्या उत्तर कोरिया जो बीच पे मिसाइल टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट करता था, उससे जो एक इंस्टेबिलिटी का वातावरण वहां बन जाता था, उसके कारण कई हमारी पहल जो उस तरफ वो फलीभूत नहीं हो पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये हम कोशिश करके इसको, राष्ट्रपति मून की पहल सफल होती है, उसमें भारत को जो अपनी रणनीति उस क्षेत्र के लिए है उसको ज्यादा मजबूत होती हुई दिखेगी।
दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति के भारत दौरे के बारे में बता रहे थे हर्ष पंत।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
बिहार के सारण जिले के एक प्राइवेट स्कूल की छात्रा के साथ स्कूल में ही कथित तौर पर बीते 9 माह से सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। बीती गुरुवार रात मामला सामने आने के बाद अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उधर राज्य महिला आयोग ने भी इस मामले पर रिपोर्ट तलब की है। सारण से सीटू तिवारी की रिपोर्ट।
बाथरूम में 4 लड़का घुसा, उसके बाद फूलो हमसे सेक्स करने लगा। सेक्स करने के बाद पूरा लड़का को बुलाया, स्कूल का लड़का सबका, वो भी हमसे सेक्स करने लगा। और प्रिंसिपल भी देखे तो बोले कि धो लो।
ये आवाज़ 15 साल की एक बच्ची की है। ये बच्ची बिहार के सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट स्कूल की 10वीं की छात्रा है। बच्ची जो बता रही है वो उसकी आप बीती है और नवंबर 2017 से उसके साथ कथित तौर पर लगातार हो रहा है। बच्ची की माने तो बीती सर्दियों में उसकी कक्षा में साथ पढ़ने वाले 4 लड़कों ने उसके साथ स्कूल के बाथरूम में सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में कक्षा के दूसरे लड़कों को ये पता चला तो उन्होंने भी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। हालात ये बने कि स्कूल के प्रिंसिपल ने भी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची बताती है,
2-4 दिन के बाद स्कूल गए तो मास्टर सर पूछे ठीक है ना, हम बोले हम ठीक है, मतलब सर पूछे ठीक है तो हमको ऑफिस में बुला कर हमसे गलत काम करने लगे, वो भी प्रिंसिपल। उसके बाद 2 शिक्षक भी थे, 2 शिक्षक वो भी हमको बाथरूम में ले जाकर हमसे करने लगे। हमको छुरी भी दिखाया था, धमकाया भी था, मारा भी है।
बीती 5 जुलाई को ये मामला तब खुला जब बच्ची स्कूल के लंच आवर में ही वापस चली आई, उसके कपड़ों में खून लगा था। बच्ची की मां ने जब ये बात कुछ माह पहले जेल से बेल लेकर लौटे पिता को बताई तो उन्हें कुछ शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने सख्ती से बच्ची से पूछा। नतीजे में ये पूरा मामला सामने आया। दरअसल बच्ची के पिता बीते 2 साल से जेल में सजा काट रहे थे और बच्ची की मां मानसिक तौर पर कमजोर है। बच्ची और उसके पिता दोनों ने ही बीबीसी से बातचीत में कहा कि यही वजह थी कि बीते 9 माह से लगातार होते सामूहिक दुष्कर्म की बात बच्ची अपनी माँ से नहीं बता पाई। बच्ची के पिता कहते हैं,
हम नहीं चाहते हैं कि जो मेरी बेटी के साथ किसी और की बेटी के साथ, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि किसी और की बेटी के साथ किसी और की बहन के साथ ऐसा ना हो।
इस मामले में बच्ची के साथ पढ़ने वाले 15 छात्र, प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल उदय कुमार उर्फ मुकुंद जी और स्कूल के 2 शिक्षक बालाजी और सत्यप्रकाश को आरोपी बनाया गया है। जिन 15 छात्रों को आरोपी बनाया गया है उसमें प्रिंसिपल उदय कुमार का बेटा भी शामिल है। उदय कुमार के परिजनों ने बीबीसी से कहा कि उन्हें मामले में जबरन फंसाया जा रहा है। साथ ही उदय कुमार की पत्नी ने कहा कि उन लोगों को लगातार धमकी दी जा रही है।
धमकी दे रहे हैं लोग कि आग लगा देंगे, तो हम तो सोच रहे हैं कि मतलब स्कूल का सुरक्षा कीजिए आप लोग।
सब जालसाज जो है से करके वो बदमाश है, शायद चोरी डकैती करते हैं, वो शायद पैसा उसा कुछ मांगे हुए थे, इन्हें दिए अपना, चलिए कुछ फंसा देते हैं कुछ रमन।
ये थे उदय कुमार की पत्नी नित्या देवी और ससुर अशोक की आवाज। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बच्ची का मेडिकल कराया गया है जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। सारण के SP हरकिशोर राय ने BBC से कहा,
गिरफ्तारी हुई है, उसमें मेडिकल करवाया गया है, 164 स्टेटमेंट कोर्ट में बच्ची का करवाया गया, बाकी बचे हुए गिरफ्तारी के लिए रिपोर्ट अभी नहीं आया है, 19 लोगों को एक्सेस बनाया गया।
वहीं इस मामले में राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आयोग की सदस्य उषा विद्यार्थी ने BBC से कहा,
सबसे पहले मैंने हम लोग अनुशंसा महिला आयोग करेगी कि 2 महीने के अंदर उसको चार्जशीट दाखिल करके और जो उस तरह का कुकृत किया है उस व्यक्ति को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए।
इस मामले की सच्चाई मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कि स्कूल भी अब बच्चियों के लिए सुरक्षित नहीं रहे। हाल के साल में हुई कई घटनाएं इसकी गवाही देती हैं। सीटू तिवारी, BBC, एकमा, सारण।
केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा कल अचानक उस समय सुर्खियों में आ गए जब उनकी कुछ तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया में छा गईं। इन तस्वीरों में जयंत सिन्हा फूलमाला पहने हत्या मामले के कुछ अभियुक्तों के साथ खड़े थे। जयंत सिन्हा की इन तस्वीरों पर इतना शोर हुआ कि उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी इस पर नाराजगी जताई। सुनिए BBC संवाददाता अनंत प्रकाश की रिपोर्ट।
हमें बहुत ही खराब लग रहा है ये फोटो देखकर, बहुत ही तकलीफ पहुंच रहा है दिल को कि किसी के सादे कपड़े पर खून लगाने वाले इंसान को आज लाल लाल फूलों की माला पहनाई जा रही है, तो ये एक बहुत ही गंदा मैसेज दिया जा रहा है कि देखो।
ये शब्द शमा परवीन के हैं जिनके पिता अलीमुद्दीन अंसारी को बीते साल 29 जून को आक्रोशित भीड़ ने भरे बाजार में सड़क पर पीट पीट कर मार डाला था। इस मामले के लिए बनाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बीती 20 मार्च को 11 अभियुक्तों को दोषी मानकर उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इन लोगों में स्थानीय BJP नेता नित्यानंद महतो भी शामिल थे, लेकिन जब यह मामला रांची हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने इन लोगों की सजा पर स्टे लगाकर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। स्थानीय पत्रकार रवि प्रकाश बताते हैं कि कुछ दिन पहले ये लोग केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा से मिलने उनके घर पहुंचे थे, जहां पर इनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया था।
जयंत सिन्हा जो हजारीबाग के सांसद हैं और केंद्र की सरकार में मंत्री भी हैं, इन्होंने 2 दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के उस नेता का अभिनंदन किया जिन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया था निमुद्दीन की मॉब लिंचिंग के मामले में।
इस मामले के अभियुक्तों का केंद्रीय मंत्री से इस तरह मिलना और केंद्रीय मंत्री के द्वारा उन्हें शुभकामनाएं दिए जाने से दुखी अलीमुद्दीन की बड़ी बेटी शमा परवीन कहती हैं कि केंद्र सरकार इससे क्या संदेश देना चाहती है।
सब कुछ जानने के बाद एक केंद्र मंत्री उनको सपोर्ट कर रहा है, उन्हें मिठाई खिला रहा है, उसे वर्णमाला पहना रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब मजाक बन गया इस देश के कानून के ऊपर, बहुत बड़ा मजाक बन गया।
अलीमुद्दीन अंसारी की मौत के मामले में शुरुआती पुलिस जाँच के मुताबिक कथित गौरक्षकों के एक दल ने सरेआम पीट पीट कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया था। इसके बाद अस्पताल ले जाते समय अलीमुद्दीन अंसारी की मौत हो गई। अलीमुद्दीन अंसारी की पत्नी मरियम खातून इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कहती हैं।
हमें अभी भी कानून पर पूरा भरोसा है और विश्वास है, और मेरा हिंदुस्तान का जो कानून है वो सही इंसाफ करते हैं और करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि इंसाफ अच्छे ही करेंगे।
जयंत सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी के उस नेता का अभिनंदन किया जिन्हें कोर्ट ने अलीमुद्दीन की हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाया है कि जिनके ऊपर कानून की रक्षा का दायित्व है वो उन लोगों को कैसे सम्मानित कर सकते हैं जो कि अभियुक्त हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयंत सिन्हा के पिता यशवंत सिन्हा ने भी ट्विटर के माध्यम से इस मामले में केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा की आलोचना की है। इस मामले पर चौतरफा आलोचना से घिरने के बाद जयंत सिन्हा ने ट्विटर के माध्यम से अपनी सफाई पेश की है। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ट्विटर पर लिखते हैं, मैं स्पष्ट रूप से हर तरह की हिंसा की निंदा करता हूं। संविधान के आधार पर चलने वाले हमारे लोकतंत्र में कानून सर्वोपरि है। किसी भी तरह के गैरकानूनी काम जो किसी नागरिक के अधिकार का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रामगढ़ मामले में माननीय रांची हाईकोर्ट जो कि याचिका के लिए पहली अदालत है ने उनका तर्क मानते हुए अभियुक्तों की सजा पर स्टे लगा दिया है और इस मामले की दोबारा सुनवाई की जाएगी। BBC अनंत प्रकाश, दिल्ली।
चलते हैं भारत प्रशासित कश्मीर, जहां अलगाववादी आंदोलन का प्रमुख चेहरा आसियान द्राबी को कल दिल्ली की एक अदालत ने भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 10 दिन के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में सौंप दिया। आसिया पर आरोप लगाए गए हैं कि वह पाकिस्तान के संपर्क में थी और भारत के खिलाफ कथित तौर पर जंग छेड़ने की कोशिश कर रही थी। आखिर कौन है आसियान द्राबी, सुनिए माजी जहांगीर की इस रिपोर्ट में।
श्रीनगर के नावपोरा खानियार में जन्म पाने वाली 58 वर्ष की आसिया इंद्राबी अलगाववादी संगठन दुख्तरानी मिल्लत की चेयरपर्सन हैं। आसिया ने जब श्रीनगर के वुमेन कॉलेज में बीएससी में दाखिला लिया था तो वो शहर की दूसरी आम लड़कियों की तरह ही सामान्य तरीके से अपनी जिंदगी गुजारती थीं। कॉलेज में आने के बाद उन्होंने कई धार्मिक किताबें पढ़नी शुरू की और उनके सोचने का रुख बदल गया। हालांकि कुछ पत्रकारों का ख्याल है कि उर्दू के मशहूर शायर और लेखक माइल खैर आबादी की किताब ख्वातीन की दिलों की बातें पढ़कर उनकी विचारधारा का रुख ही बदल गया। पत्रकार और लेखक हारून ऋषि कहते हैं,
मैंने एक बार उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई किताब ख्वातीन के दिलों की बातें एक किताब है, उर्दू की किताब है, उसको पढ़ने के बाद उनके उनमें वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई और वो इस्लामी ज़हनियत की एक हामिल खातून बन गई। उसके बाद उन्होंने जद्दोजहद शुरू की जो वो आज तक चला रही है।
आसिया ने कॉलेज के ज़माने से ही छात्र राजनीति शुरू की थी और इसी दौरान उन्होंने दुख्तरानी मिल्लत की बुनियाद भी डाली थी। उनकी विचारधारा में हमेशा इस्लामी रंग का प्रभाव रहा है, वरिष्ठ पत्रकार खुर्शीद वानी कहते हैं।
लेकिन इस्लामी रंग जो है हमेशा उनकी आइडियोलॉजी में रहा है और इस्लामिक हमेशा उन्होंने अपनी एक्टिविटीज की है।
आसिया ने हमेशा ही कश्मीर में खुलेआम चरमपंथ का समर्थन किया, हारून ऋषि कहते हैं।
उन्होंने खुल के मिलिटेंसी का सपोर्ट वो करती रही हैं और वो कश्मीर को वो चाहती हैं, उनकी आइडियोलॉजी है कि कश्मीर का इलाक मजहब की बुनियाद पे पाकिस्तान के साथ हो जाए या कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए।
आसिया को पहली बार वर्ष 1990 में गिरफ्तार किया गया था और जेल में ही उनका पहला बच्चा मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो गए थे। तब से लेकर आज तक आसिया को कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है। आसिया के दो बेटे हैं। आसिया की शादी वर्ष 1991 में डॉक्टर मोहम्मद कासिम फक्तू से हुई थी जो करीब बीते 20 वर्षों से जेल में हैं और वह हदियालाल वांचू की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। डॉक्टर कासिम खुद भी एक सक्रिय चरमपंथी थे। आसिया ने कश्मीर में महिलाओं को पर्दे में रहने की भी मुहिम चलाई थी और कैफे कल्चर के खिलाफ भी काफ़ी सक्रिय रही हैं, लेकिन जनता ने इस तरह की मुहिम की सख्त आलोचना की और आसिया को इसमें सफलता नहीं मिली। आसिया हर साल कश्मीर में पाकिस्तान डे मनाती रही हैं। आसिया को एनआईए की ओर से दिल्ली के तिहाड़ जेल में ले जाने के खिलाफ शनिवार को कश्मीर के अलगाववादियों ने कश्मीर बंद बुलाया था। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
पाकिस्तान में इस समय सियासी पारा आसमान छू रहा है, एक तरफ आम चुनाव और दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा। इन सभी खबरों को पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में किस तरह जगह दी गई है, सुनते हैं उर्दू प्रेस रिव्यू में, जिसे तैयार किया है बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद ने और इसे अपनी आवाज दी है कमलेश मठेनी ने।
पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सारे अखबारों में चुनाव से जुड़ी खबरें ही इस हफ्ते सुर्खियां बटोरती रहीं। लेकिन शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद उनसे जुड़ी खबरें अखबारों में जगह पाने लगी। अखबार जंग के मुताबिक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी भ्रष्टाचार निरोधी अदालत ने नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर को आय से अधिक संपत्ति जमा करने का दोषी पाया है। दरअसल शरीफ परिवार के नाम पर लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट है, इस मामले में उन पर मुकदमा चल रहा था। नवाज शरीफ इस समय लंदन में है जहां उनकी पत्नी कुलसुम नवाज का इलाज चल रहा है। मरियम नवाज भी लंदन में है। अखबार जंग के मुताबिक मरियम नवाज ने कहा है कि वो अपने पिता के साथ 13 जुलाई को लाहौर वापस आएंगी। अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि अदालती फैसला हास्यास्पद है और सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। अखबार एक्सप्रेस के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब, पाकिस्तान तहरीफ इंसाफ और पीपीपी, उनकी पार्टी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। अखबार दुनिया के अनुसार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने कहा कि पहली बार एक ताकतवर आदमी को सजा मिली है। पूर्व राष्ट्रपति और पीपीपी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी का कहना है कि इस अदालती फैसले का वक्त गलत है, इससे नवाज शरीफ की पार्टी को सियासी लाभ होगा। इसके अलावा चुनावी तैयारियों से जुड़ी खबरें सभी अखबारों के पहले पन्ने पर छपती रहीं। अखबार एक्सप्रेस के अनुसार इमरान खान ने एक चुनावी रैली में पीपीपी और मुस्लिम लीग नून दोनों की जमकर आलोचना की। इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ को 30,000 करोड़ का हिसाब देना है, बिलावल भुट्टो कभी 1 किलोमीटर पैदल नहीं चले और प्रधानमंत्री बनने की तैयारियां कर रहे हैं, मरियम नवाज ने कभी 1 घंटा काम नहीं किया लेकिन प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं।
अब कमलेश से ही जान लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों का हाल। कमलेश बताएं क्या कुछ है आज के अखबारों में।
आप देख रहे हैं शाहिद, जैसे इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा से जुड़ी हुई खबर है। कल जयंत सिन्हा तब विवादों में आ गए थे जब मॉब लिंचिंग के कुछ अभियुक्तों का सम्मान करते हुए उनकी तस्वीर सामने आई थी, जो अभी रिपोर्ट भी सुनी है हमने। उसके बाद उनके पिता जयंत सिन्हा ने उनको नालायक बेटा तक कह दिया था। इसके अलावा एक और खबर है जिसमें बताया गया है कि जेईई और नीट की परीक्षाएं अब साल में 2 बार होंगी, साथ ही ये परीक्षा अब सीबीएसई नहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। यही खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के पन्ने पर भी है। इसके अलावा यहाँ जम्मू कश्मीर से भी एक खबर है जिसमें चरमपंथी बुरहान वानी की दूसरी बरसी पर पथराव की खबर दी गई है। इस पथराव में सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई और गोलीबारी में 3 लोगों की जान चली गई। ये घटना दक्षिण कश्मीर के कुलवाम इलाके में हुई है। इसके अलावा है हिंदी अखबारों को हम देखें तो हिंदुस्तान में एक खबर छपी है कि मई और जून में अफवाह फैलाने वाले 7 करोड़ ट्विटर अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है। अफवाहों के चलते कई मौतों की भी खबरें
बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे अफवाहों का जोर है, तो इस पे अफवाहों पे कमी यकीन किया जाए हम श्रोताओं को कहेंगे।
हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ट्विटर ने कई अकाउंट बंद किए हैं। इसके लिए एक विशेष मुहिम भी चलाई गई थी ताकि ट्रोल और अफवाह फैलाने वाले अकाउंटों पर नजर रखी जा सके। वही दैनिक भास्कर में बॉटम में एक खबर है कि ऋषिकेश में एडवेंचर गेम्स पर बैन से 3 लाख से ज्यादा लोग अब बेरोजगार हो जाएंगे। हम श्रोताओं को बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड कोर्ट ने रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर गेम्स पर रोक लगा दी थी।
बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश अखबारों की समीक्षा के लिए। अब सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में कल हाई वोल्टेज मैच में मेजबान रूस क्वार्टर फाइनल में क्रोशिया से पेनल्टीज में 4-3 से हारा और इसके साथ ही उसका अभियान भी समाप्त हो गया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 से बराबरी पर थी और इसके बाद अतिरिक्त समय में भी दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया, लेकिन आखिरकार पेनल्टीज में क्रोएशिया ने बाजी मारी और सेमीफाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में उसका सामना इंग्लैंड से होगा जिसने इससे पहले खेले गए अन्य क्वार्टर फाइनल में स्वीडन को 2-0 से हराया। इंग्लैंड की टीम साल 1990 के बाद विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची है। इंग्लैंड के लिए पगवार ने खेल के 30वें और डेल ने खेल के 59वें मिनट में गोल किया। उधर विंबलडन में कल महिला एकल वर्ग में सबसे बड़े उलटफेर का शिकार होकर शीर्ष वरीयता हासिल सिमोना हालेप बाहर हो गई। उन्हें चीन ताइपे की गैर वरीयता हासिल सीसू वेई ने 6-4, 7-5 से हरा दिया। वेई ने जीत की वजह दर्शकों का समर्थन माना। कल ही बेल्जियम की 15वीं वरीयता हासिल एलिसे बर्टेंस, 17वीं वरीयता हासिल ऑस्ट्रेलिया की एशले बर्टी भी हार कर बाहर हुई, तो पुरुष एकल वर्ग में 4थी वरीयता हासिल जर्मनी के ज्वेरेव का बाहर होना भी आश्चर्यजनक रहा। ज्वेरेव को क्वालिफायर लातविया के गुलबिस ने 7-6, 4-6, 5-7, 6-3, 6-0 से हराया। इन तमाम हार के बीच स्पेन के राफेल नडाल ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी विनर को 6-1, 6-2, 6-4 से हराकर चौथे दौर में पहुंचने में कामयाब रहे।
वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, लेकिन चलते चलते मुख्य समाचार कमलेश मठेनी से।
अमेरिका के मिसौरी की कंसास सिटी में शुक्रवार शाम को गोलीबारी हुई जिसमें एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। मारे गए छात्र की पहचान तेलंगाना के वारंगल जिले के 25 वर्षीय शरद कोपू के रूप में हुई है। फुटबॉल विश्व कप के 4थे क्वार्टर फाइनल में शनिवार को रूस और क्रोएशिया के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट में रूस को 4-3 से हराकर क्रोएशिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। हैती की सरकार को देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते पेट्रोल के दामों में 40% वृद्धि का फैसला रद्द करना पड़ा है। इससे पहले पेट्रोल के दाम बढ़ाने के फैसले के बाद देश में हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा में कम से कम 3 लोगों की जान चली गई। जापान के पश्चिमी इलाकों में आई बाढ़ और भूस्खलन में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 लोग लापता हैं। इन इलाकों में कई दिनों से मूसलाधार बारिश के चलते हालात काफी बिगड़ गए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। कार्यक्रम को फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाया प्रशांत चहल ने। मोहम्मद शाहिद को समस्त सहयोगियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।